नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। पौड़ी के दीदी कैफे ने पहाड़ी व्यंजनों से बनाई अलग पहचान, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभरा। नैनीताल जिले के शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र में रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन की योजना का कार्य पूरा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में होली मिलन समारोह का आयोजन, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित थी। ये बैठक ईरान के साथ इजराइल अमेरिका के बढ़ते संघर्ष से बदलते वैश्विक परिदृश्य के मद्देनजर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और कहा कि नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के पक्ष में है। पौड़ी मुख्यालय में संचालित दीदी कैफे ने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। 15 अगस्त 2023 को शुरू हुए इस कैफे में जहां स्थानीय समूह की महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं, वहीं पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देकर ये कैफे क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। एक रिपोर्ट।
दीदी कैफे का संचालन समूह की 4 महिलाएं और 2 पुरुष कर रहे हैं। कैफे में आने वाले लोगों को पारंपरिक पहाड़ी स्वाद परोसा जा रहा है। यहाँ पहाड़ी दाल, चौंसा, लाल चावल का भात, कंडाली की सब्जी और मंडू की रोटी सहित कई स्थानीय व्यंजन तैयार किए जाते हैं। खास बात यह है कि पहाड़ी भोजन के साथ ही मंडुए के मोमो भी लोगों की पसंद बन चुके हैं, जिनकी लगातार मांग बढ़ रही है। गौरतलब है कि दीदी कैफे के भवन का मरम्मत कार्य जिला योजना के माध्यम से कराया गया था। वहीं हेमोत्थान समिति देहरादून के सहयोग से कैफे को बर्तन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं। इससे कैफे की सुविधाएं बेहतर हुई हैं और संचालन को मजबूती मिली है। कैफे से प्रतिदिन औसतन 3,500 से 4,000 रुपए की कमाई हो रही है। वहीं महीने में इनका टर्नओवर 1,00,000 रुपए से अधिक तक पहुंच रहा है। इससे समूह से जुड़ी महिलाओं को नियमित रोजगार मिल रहा है और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि दीदी कैफे महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों को बाजार से जोड़कर महिलाओं की आय बढ़ाई जा रही है। कैफे के माध्यम से समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और यह पहल अन्य समूहों के लिए भी प्रेरणादायक है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह।
वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में पिछले वर्ष फरवरी की तुलना में इस वर्ष कुल 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई। GST संग्रह इस वर्ष फरवरी में 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। फरवरी 2025 में कुल GST संग्रह 1,69,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस वर्ष फरवरी में केंद्रीय GST संग्रह 37,473 करोड़ रुपए और राज्य GST संग्रह 45,900 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत IGST संग्रह 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के कर्मी गांव निवासी दीपक सिंह दानू का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। दीपक BD पांडे कैंपस में MA के विद्यार्थी हैं और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कल से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के मुक्केबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। दीपक 65 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करेंगे। दीपक पूर्व में भी नेशनल स्तर पर बॉक्सिंग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। उनके चयन से जिले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
नैनीताल जिले के भीमताल स्थित शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र में रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन की योजना का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस पहल से अब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सकेगा। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर एस पतियाल के अनुसार भारत में रंगीन मछलियों को पहले दूसरे देशों से मंगाया जाता था, लेकिन अब योजना के तहत रंगीन मछली यहीं उत्पादित की जा रही है। इसमें अनुसंधान केंद्र के सहयोग से स्थानीय किसान अपने खेत में छोटे छोटे तालाब बनाकर उसमें मछलियों को पालकर बेच सकते हैं और एक नए रोजगार से जुड़ सकते हैं।
अब यहाँ पर ब्रीडिंग है, सीड प्रोडक्शन है, सब हम लोग करते हैं और काफी विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने इनका प्रशिक्षण दिया है। बहुत से फार्मर्स को कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्वतीय इलाका पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो होटलों में, रिजॉर्ट्स में तो लोग बाग रखने लगे हैं क्योंकि इसका एक तो धार्मिक महत्व है और एस्थेटिक वैल्यू है, और इसको जो फार्मर है छोटे छोटे जगह पे भी ब्रीडिंग करके इसका सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास छोटा जगह है, अपना एक्वाटन डेवलप करके उसमें ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, सीड प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और 20-30 हजार रुपया कम से कम लोग कमा लेते हैं छोटे से जगह पे।
प्रदेश में राजधानी देहरादून सहित विभिन्न जिलों में इन दिनों आयोजित किए जा रहे होली मिलन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के प्रसिद्ध सांस्कृतिक हुक्का क्लब में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों ने वृंदावन की राधा कृष्ण और फूलों की होली प्रस्तुत की। चंपावत जिले के लोहाघाट से आए होली रंग महोत्सव समिति की महिला दल ने काली कुमाऊं अंचल की होली प्रस्तुत की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि कुमाऊं की होली पूरे देश में पहचान रखती है। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी।
आज अल्मोड़ा के अंदर काली कुमाऊं की लोहाघाट की होली भी यहाँ हुक्का क्लब, जो कि सांस्कृतिक रूप से एक क्लब, अपने आप में बहुत सारे कार्यक्रम रामलीला से लेकर करवाते ही रहते हैं और बहुत खुशहाली का यह त्योहार मनाया जा रहा है और बहुत ही सब लोग इस प्यार से खुशहाली के साथ होली कार्यक्रम में शामिल हुए। सबको मेरे तरफ से होली की बधाइयां।
होली रंग महोत्सव समिति के अध्यक्ष जीवन मेहता ने कहा कि इसके माध्यम से पौराणिक होली का गायन कर संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
2013 में हमने विलुप्त हुई होली को एक बार फिर पुनः जागृत करने का कार्य किया। आज हम हुक्का क्लब अल्मोड़ा में अपनी लोहघाट की महिलाओं के द्वारा सुंदर खड़ी होली का गायन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे इस होली का उद्देश्य है भाईचारा, मेल मिलाप, और इस होली के माध्यम से हमारे पूर्व में, चाहे वो त्रेता युग की बात हो, द्वापर युग की बात हो, सतयुग की बात हो, उनकी कहानियों के माध्यम से हम अच्छा और बुरे का संदेश देते हैं। और मैं नौजवानों से अनुरोध करूंगा, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े, अपने गाँव के रहे, अपने संस्कारों के रहे। सभी देश प्रदेश रहने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, होली के शौक से अपने गांव आएं, अपने घर आएं और पूजा पाठ करें।
होली पर्व और रमजान माह को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से नैनीताल जिला पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली हल्द्वानी में थाना हल्द्वानी, मुखानी, बनभूलपुरा और काट गोदाम की संयुक्त पीस कमेटी के बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हल्द्वानी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने की। बैठक में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी, समाज सेवी संगठन, नगर निगम हल्द्वानी के पार्षद, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी धर्मों के लोगों से भाईचारे और आपसी सम्मान के साथ होली और रमजान मनाने की अपील की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति बैठक की अध्यक्षता की। पौड़ी के दीदी कैफे ने पहाड़ी व्यंजनों से बनाई अलग पहचान, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक सफल मॉडल बनकर उभरा। नैनीताल जिले के शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र में रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन की योजना का कार्य पूरा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में होली मिलन समारोह का आयोजन, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।